अध्याय तीसरा। मैंने शांति भरे मैक्लॉडगंज से विदाई ली। यद्यपि वहां प्राप्त हुए आनंद और कृपा को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, फिर भी इस आशा में कि नियति मेरा मार्ग स्वयं दिखलाएगी, मैं भारत के अन्य पवित्र स्थलों तथा परंपराओं का अनुभव लेना चाहता था। मैं ट्रेन द्वारा पठानकोट से कुरुक्षेत्र पहुंचा। ये भारत के पवित्र तीर्थों में से एक है और यहीं सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया गया था। जैसे ही मैं स्टेशन से अपनी आध्यात्मिक पुस्तकों के भारी झोले को ढोते हुए निकला, मुझे एक मंदिर के खड़खड़ाते स्पीकर से भगवद्गीता का पाठ सुनाई देने लगा। जब अर्जुन विकट समस्याओं के सामने खड़ा अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहा था, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उसे भगवद्गीता का संदेश सुनाया। मैंने स्वयं को श्रीकृष्ण की उन्हीं शब्दों के अध्ययन में लीन कर दिया। गीता युद्धभूमि पर कही गई थी। जीवन भी एक युद्ध है, जहां बुराई सदैव अच्छाई पर आक्रमण करती है और अपरिहार्य रूप से हमारे सच्चे आदर्शों की परीक्षा होती है। हम सभी को अंदर और बाहर के गहरे खतरों और भयानक असुरों रूपी दुर्गुणों का सामना करना पड़ता है। श्रद्धा और निष्ठा से इन आतताइयों को सामना करने पर हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। श्रीकृष्ण ने अपने कालातीत संदेश की पराकाष्ठा पर निस्वार्थ भक्ति, दृढ़ निश्चय और आध्यात्मिक तन्मयता का मार्ग बताया। इस मार्ग पर चलकर हमें स्वयं से परे एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो हमें समस्त भयों से मुक्त कर देती है, और वो भगवान के प्रेम की शक्ति। उस पवित्र स्थान में भगवद्गीता का संदेश मेरे हृदय में ऐसे समा गया कि मुझे लगा मानो श्रीकृष्ण स्वयं हर पृष्ठ पर मुझसे बातें कर रहे थे। गीता प्रेस की छोटी भगवद्गीता से मैं प्रतिदिन अनेक अध्याय पढ़ता। मैंने अपने भ्रमण के दौरान अनेक आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े थे, पर किंतु कोई भी मुझे इतना व्यावहारिक नहीं लगा। भगवद्गीता को उसी वटवृक्ष के नीचे पढ़ते हुए जहां श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, मैंने देखा कि गीता सभी सांप्रदायिक और ऐतिहासिक सीमाओं से परे जाकर अत्यंत सटीकता से आत्मसाक्षात्कार के विज्ञान को सिखलाती है। यह अनेक जटिल विषयों की व्याख्या करती है, जैसे आत्मा का ईश्वर से संबंध, निर्विकारी आत्मा कैसे भौतिक प्रकृति से प्रभावित होती है, कैसे कर्म के नियम हमें प्रभावित करते हैं और कैसे काल का दुर्गाह्य प्रभाव सृष्टि पर पड़ता है। सत्य की खोज में मैं अकेला भ्रमण कर रहा था और किसी भी क्षण मुझे खतरे, प्रलोभन और भय दबोच सकते थे। इन परिस्थितियों के बीच मुझे गीता के अमर शब्दों में सांत्वना और दिशा मिलती। कुरुक्षेत्र में भगवद्गीता मेरी मार्गदर्शिका बन गई और उसने सिखाया कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। कुछ दिनों पश्चात मैंने हरियाणा छोड़ दिया। एक बार जब मैं भारत के मैदानी भागों से जाती हुई रेल में यात्रा कर रहा था, तो कुछ समय के लिए रेल एक स्टेशन पर रुकी। वहां मैंने एक क्रूर दृश्य देखा। प्लेटफॉर्म पर एक किशोर को उसका मालिक गालियां देता हुआ पीट रहा था। उस बालक ने न तो अंगुली उठाई और न ही कुछ बोला। मालिक शीघ्र ही घसीटता हुआ उसे ले गया। मैंने निकट खड़े कॉलेज के एक विद्यार्थी से मामले की पूछताछ की। सिर हिलाते हुए उसने उत्तर दिया, उस लड़के का जन्म एक नीच जाति में हुआ है, इसलिए वो एक गुलाम के समान है। शायद उसे जीवन भर उचित शिक्षा का अवसर नहीं मिलेगा और न ही उसे दलित जाति से बाहर विवाह करने दिया जाएगा। आजीवन वो बंधुआ मजदूर रहेगा। मैं जानता हूं, मैं भी उसी जाति का हूं, लेकिन मैं भाग्यशाली रहा। सरकार इस अन्याय से लड़ रही है और अधिकतर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं समाजवादी लोग भी इसका बहिष्कार करते हैं, किंतु फिर भी ये विचारधारा उनके लोगों के मन से गहराई से बैठी हुई है। उसने बताया कि वो यह जातिवाद वास्तव में वैदिक शास्त्रों से वर्णित वर्णाश्रम धर्म का विकृत रूप है। वर्णाश्रम सिखाता है कि जिस प्रकार मानव शरीर में सिर, भुजाएं, पेट और टांगे होती हैं और प्रत्येक अंग पूरे शरीर के भले के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार समाज रूपी शरीर में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रवृत्तियों एवं कौशल के अनुसार स्वयं और पूरे समाज के आध्यात्मिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। वैदिक वर्णाश्रम का उद्देश्य सभी को समर्थ बनाना तथा प्रोत्साहित एवं एकजुट करना था, किंतु अंत में उसने कहा, जन्म के आधार पर जाति के निर्धारण की इस मनगढ़ंत प्रथा और निम्न जातियों के शोषण से उस सुंदर व्यवस्था को विकृत बना दिया है। मेरे विचार अमेरिका और यूरोप के धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के शोषण के ऊपर चले गए। दुखी हो मैंने सोचा कि अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने और अन्यों का शोषण करने की प्रवृत्ति अनेक वेश अपनाती है और समाज, राजनीति, दर्शन और यहाँ तक कि धर्म में भी प्रवेश कर जाती है। मुझे स्पष्ट होता जा रहा था कि यदि मैं वास्तव में भगवान को जानना चाहता हूँ तो मुझे किसी एक मार्ग को अपनाना होगा, किंतु मैं चिंतित था कि ऐसा चुनाव संकीर्ण मनोवृत्ति को जन्म दे सकता है। मैं भारत के प्रमुख धर्मों में से एक की ओर आकर्षित था और मुझे ये जानकर प्रसन्नता थी कि सच्चे हिंदू दर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर मानवीय शोषण का समर्थन करे, और न ही मैंने अब तक मिले साधुओं के बीच इस प्रकार का कोई पक्षपात देखा था। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी के सुंदर वातावरण में मैंने मीलों भ्रमण किया। नैसर्गिक परिवेश में मैं स्वयं को भगवान के बहुत निकट अनुभव करता था। दो दिन पूर्व रेलवे स्टेशन ही की एक दीवार पर कुल्लू का एक फोटो देखकर मैंने यहाँ आने का विचार किया और एक ट्रक पर बैठकर यहाँ आ पहुँचा। एक दिन चीड़ की गंध से महकती हिमालय की ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए मुझे कोलोराडो से आया एक यात्री मिला जो मुझे पहले ईरान में भी मिला था। उस समय वो तिब्बती बौद्ध धर्म सीखने हेतु भारत आ रहा था। कैसी रही तुम्हारी खोज, मैंने पूछा। वो एक ध्यानावस्था में चला गया और उसकी आंखें ऊपर की और घूम गई। भगवान ने अवतार लिया है, उसकी पलकें फड़फड़ाई और आवाज कांप गई। उनकी उंगली के स्पर्श मात्र ने दिव्य ज्योति से मुझे चकाचौंध कर दिया। आनंद की लहरों ने मेरे अंग अंग को पुलकित कर दिया। दिव्य संगीत मेरे कानों में गूंज उठा। मुझे मधुर सुगंध आने लगी और मैंने सुधारस का आस्वादन किया। तुम्हें तुरंत वहां जाना चाहिए, जगत के स्वामी इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं। एक चिकित्सक जैसे मरणासन्न व्यक्ति को औषधि देता है, उसने जोर से देते हुए कहा, भारत की तुम्हारी लंबी यात्रा की पराकाष्ठा हरिद्वार में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। भाई अभी निकल जाओ, विलंब न करो, परमेश्वर शीघ्र ही विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। कौतूहलवश मैं हरिद्वार स्थित उस आश्रम में जा पहुंचा। मंदिर में वेदी पर रखे एक बड़े फोटो को देखकर मैं विस्मित हो गया। वो चित्र एक युवा गुरु का था जो मुकुट और मोरपंख पहने बांसुरी बजाते हुए श्रीकृष्ण की मुद्रा में खड़े थे, लेकिन वो श्रीकृष्ण के उस चित्र से बहुत भिन्न लग रहा था जिसे मैंने दिल्ली में खरीदा था, और मेरे कोलोरेडो के मित्र के समान ही उनके शिष्य मेरे पास आकर गश खाने लगे। परम कृपालु भगवान इतिहास में राम और कृष्ण के रूप में आए और अब वे पुनः आ गए हैं। जब गुरु महाराज ज्ञान प्रदान करते हैं तो वे आपके दिव्य नेत्र खोल देते हैं, तब आप उन्हें ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में समझ पाएंगे। क्योंकि गुरु महाराज जी शीघ्र ही अपनी पहली विदेश यात्रा पर निकलने वाले थे, उनके शिष्यों ने तुरंत मुझे एक बस में लिया और दिल्ली के लिए निकल पड़े। नई दिल्ली में गुरु महाराज जी के सैकड़ों शिष्य आश्रम के सामने मैदान में खड़े होकर उनकी एक झलक की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं कोने में बैठकर देखने लगा। एक अधेड़ शिष्य ने मुझसे वार्तालाप करना आरंभ किया और फिर मुझे महात्माओं के एक समूह से मिलवाया। महात्मा की उपाधि उन लोगों को दी जाती थी जो गुरु महाराज जी के ज्ञान को प्रदान करने के लिए अधिकृत थे। महात्माओं ने यह निर्णय लिया कि मुझे श्री माता जी से अवश्य मिलना चाहिए जो उनके भगवान की पूजनीय माँ थी। वे एक आसन पर बैठी अपने प्रशंसकों से घिरी हुई थी जो उन्हें चामर ढुलाते हुए उनके प्रत्येक शब्द को सुन रहे थे। उन्होंने ये निर्णय कर मुझे विस्मित कर दिया कि मुझे उनके पुत्र के विदेश निकलने से पहले उनका एक निजी दर्शन अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए एक महात्मा मुझे गुरुजी के कमरे में ले गए। गुरु महाराज जी केवल 13 वर्ष के एक गोल मटोल बालक थे और उनके बालों में एक ओर से मांग निकली थी। उन्होंने अपना परिचय देते हुए अपना नाम प्रेम रावत बताया और कहा कि वे अपने पिता श्री हंस जी महाराज के उत्तराधिकारी थे। अपने शिष्यों की भीड़ भाड़ से निकलकर गुरु महाराज जी मुझे छत पर एक निजी भेंट के लिए ले गए। जनसमुदाय से दूर हम छत पर आगे पीछे टहलने लगे। उन्होंने मेरे जीवन के विषय में अनेक प्रश्न पूछे और आने वाली अपनी पहली विदेश यात्रा के विषय में बताया। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए इच्छुक हूं, तो मैंने उन्हें वही उत्तर दिया जो पहले अनेक गुरुओं को दिया था। मैं ऐसा समर्पण संभल कर करना चाहता हूं। जब हम ऊपर वार्तालाप कर रहे थे तो नीचे भीड़ बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तभी एक महात्मा ऊपर आए और सूचना दी कि विमानतल जाने का समय हो गया है। गुरु महाराज जी ने अपनी चाल बढ़ा दी। उन्होंने कहा, मुझे जाना होगा। यदि तुम कभी ज्ञान पाना चाहो तो मेरे पास भारत, अमेरिका या लंदन आ सकते हो। हजारों लोगों की आंखों के सामने हम सीढ़ियों से नीचे उतर आए। मैं एक किनारे हो गया। गुरु महाराज जी ने बहुत धूमधाम के साथ अपने कुनबे को आशीर्वाद दिया और कार में बैठकर निकल पड़े। मैं उनका कृतज्ञ था कि उन्होंने मुझे इतना समय दिया। मुझे विश्वास था कि वे एक पहुंचे हुए योगी हो सकते थे, शायद पिछले जीवन से। किंतु जब मैंने अपने भीतर झांका तो पाया कि वहां उन्हें जगत के परमेश्वर श्रीकृष्ण मानने की जरा सी भी भावना नहीं थी। भगवान कौन है, मैंने सोचा। ये गंभीर विषय है, इसे सहजता से नहीं लिया जा सकता है। अपनी यात्राओं के दौरान मैं अपनी आध्यात्मिक पुस्तकों से बहुत आसक्त हो गया था। धीरे धीरे मेरे थैले में ही एक छोटा पुस्तकालय बन गया था। इस भारी थैले के अतिरिक्त मेरी एकमात्र संपत्ति एक भिक्षा पात्र और एक टहनी थी, जिसका उपयोग मैं एक लाठी के रूप में करता था। अनेक बार मैंने इस भार को कम करना चाहा था, किंतु जब भी मैं पुस्तकों की छटनी करने बैठता तो उनमें से एक को भी निकालकर अलग नहीं कर पाता। उन पुस्तकों में भगवद्गीता, बाइबल, उपनिषद, योगी कथामृत, बौद्ध के धर्म ग्रंथ, शंकराचार्य रचित एक पुस्तक एवं एक स्वयं श्रील प्रभुपाद द्वारा दी गई श्री कृष्ण की पुस्तक थी। क्योंकि प्रत्येक पुस्तक मेरे लिए विशेष थी और मुझे ये डर भी था कि शायद वे मुझे दोबारा न मिल पाए। मैं जहां भी जाता थके होने पर भी पुस्तकों के इस भारी थैले को ढोता रहता। एक दिन नई दिल्ली के खनौट सर्कल में मैं उस थैले को सड़क के किनारे रखकर खड़ा हो गया। डीजल का काला धुआं उगलते ऑटो रिक्शा फर्राटे से जा रहे थे। सड़क जाम की हुई कारें एक दूसरे को दबाकर आगे निकलने की होड़ में थी। साइकिल रिक्शा, ठेले, बैलगाड़ियां धीरे धीरे चल रहे थे। खटारा ट्रक हॉर्न बजाते हुए कार्बन मोनोक्साइड से भरे धुएं के बादल छोड़ रहे थे। इन सब के बीच में ट्रैफिक लाइट के हरा होने की प्रतीक्षा मैं कर रहा था। अचानक एक व्यक्ति मुझ पर झपटा, मेरी गर्दन को शिकंजे में ले उसने धातु का एक सुआ मेरे कान में गहरा घुसा दिया और पीड़ादायक तरीके से कुरेदने लगा। मैं कांप उठा। कौन है ये व्यक्ति, क्या कर रहा है, यह क्या है, मेरे कान का पर्दा फाड़ देगा। वो और भीतर तक कुरेदने लगा। मैं पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था और हिलने से भी डर रहा था। फिर उसने मेरी गर्दन छोड़ दी और झटके से सुए को मेरे कान से निकालकर मेरी आंखों के सामने कर दिया। कान के मैल का एक बड़ा ढेला सुए के साथ चिपका हुआ था। मैं हर्षित हो उठा क्योंकि इतने वर्षों में पहली बार मुझे इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा था, कम से कम एक कान से। फिर उसने दूसरा कान साफ करने के लिए 1 रुपया मांगा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। उसने मोल भाव किया किंतु कुछ न पाकर वो मेरे दूसरे कान को गंदा ही छोड़कर चला गया। जब तक मेरा कान साफ नहीं हुआ मुझे पता नहीं चल पाया कि उसने इतना मैल भरा था। समझ में आ रहा था कि साफ कान से सुनना कैसा होता है, वो भी तब जब मेरे दूसरे कान में अभी तक मैल भरा था। उदासी भरी मुस्कान के साथ मैंने आध्यात्मिक यात्रा के साथ उसकी तुलना की। मैंने सोचा शायद हमारे हृदय में जमा अहंकार रूपी मैल अंतकरण से आती भगवान की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुनने नहीं देता। ज्ञान तुल्य छड़ी से गुरु हमारे हृदय को साफ करते हैं। जब गंदगी बाहर आती है तो वो बहुत घृणित दिखती है, किंतु धैर्यपूर्वक अनुसरण करके हमें अपने हृदय की सफाई करते रहनी चाहिए। इस अनुभव से मैंने एक और शिक्षा ली। कभी कभी भगवान हमें आध्यात्मिक अनुभव का मुफ्त नमूना देते हैं, किंतु और अनुभव प्राप्त करने हेतु हमें सच्चे समर्पण रूपी धन से शुद्धिकरण की प्रक्रिया का मूल्य चुकाना होगा। मुझे अब एक संतुलित स्टीरियो सिस्टम के समान सुनाई दे रहा था। मैं जानता था कि मुझे सफाई की आवश्यकता है, केवल कान की ही नहीं अपितु हृदय की भी। मैं हरि भक्ति होने तक वहां खड़ा प्रतीक्षा करता रहा, किंतु जब मैं अपना थैला उठाने के लिए नीचे झुका, ये क्या, थैला गायब था। मैं घबरा गया, चारों तरफ खोजा, इधर उधर भागा, आसपास सभी से पूछा, किंतु सब व्यर्थ रहा। मुझे ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मेरी पुस्तकें चोरी हो चुकी थीं। किनारे पर खड़ा होकर मैं शोक करने लगा। इन बहुमूल्य पुस्तकों ने मुझे ज्ञान और प्रेरणा से बोधित किया था। वे मेरे जीवन की ऐसी निधि थी जिनका स्थान अन्य कोई भी नहीं ले सकता। मैंने उन्हें अपने शिक्षकों के कृपा भरे हाथों से पाया था। मेरी बहुमूल्य संपत्ति अब छीन चुकी थी। बहुत उदास हो और निराशाग्रस्त होकर मैं वहां से चल पड़ा। कुछ कदम चलने के पश्चात मैंने पाया कि अब चलना बहुत आसान हो गया था। मुझे इतनी समय से परेशान करता ग्रंथों का भारी बोझ अब नहीं था। अचानक जैसे मैंने निराशा का अनुभव किया था, ठीक वैसे ही अभी मैं मुक्तावस्था का अनुभव कर रहा था। लगभग उछलते हुए मैंने सोचा, मन का स्वभाव अनावश्यक को आवश्यक समझना है। मन कृत्रिम आवश्यकताएं निर्मित करता है, ये विश्वास रखते हुए कि वो उनके बिना जी नहीं सकता। इस प्रकार हम जीवन भर आसक्तियों का भारी बोझ ढोते हुए चलते हैं। आसक्ति स्वयं हमारे मन पर एक भारी बोझ है। हम शायद तब तक उस भार के स्तर को समझ नहीं पाएंगे जब तक मेरी पुस्तकों या कान के मैल के समान हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। किंतु यदि हम अपने अंतकरण में आनंद प्राप्त करेंगे तो हम एक ऐसा सादा जीवन जी सकेंगे जो अनंत जटिलताओं से मुक्त होगा। मैं इस विचार से आसक्त होने लगा था कि मैं अपने बलबूते पर सही मार्ग और गुरु ढूंढ लूंगा, लेकिन अभी मुझे समझ आने लगा कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूं उसे पाने के लिए मुझे गंभीर और निरासक्त होने की आवश्यकता है। मैंने आशा की कि मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयां मुझे अंततः परम मुक्ति तक ले जाएं। यहां पे तीसरा अध्याय समाप्त होता है।